जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा लक्ष्मी हरी राधे सीता राम रक्षण भक्त हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
गोर प्रमानंदे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज अष्टोत्तरी श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नाना समवेत गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 78 इदं च कल्य उत्थाय प्राञ्जलि श्रद्धयानित श्रुणया श्रुणय मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधने इदं च कल्य उत्थाय ప్రాంజలి శ్రదయాన్విత శృణుయా చన్మయమర్తి ముచ్యతే కర్మబంధనౌ ఇదం జ కల్య ఉత్థాయ ప్రాంజలి శ్రదయాన్విత శృణుయా చన్మయమర్త్యు ముచ్యతే కర్మబంధనై బతావు ఇక శబ్దా ఇస్ ప్రకారే ఇదం య స్తుతి జో భక్త कल्ये प्रातःकाल उत्थाय उठकर प्रांजलि हाथ जोड़कर श्रद्धया श्रद्धापूर्वक अनित्य लीन रहकर श्रुणयात स्वयं जपता तथा सुनाता है श्रावेत तथा सुनाता है मर्ते ऐसे मनुष्य मुच्यते मुक्त हो जाता है कर्म बंधने सभी प्रकार के कर्म बंधन से इसका अनुवाद और तात्पर्य जगत गुणेश्वर प्रभुपाद का श्रील प्रभुपाद के अनुवाद जो भक्त प्रातःकाल उठ करे हाथ जोड़कर शिव जी को द्वारा गाई गई इसी स्तुति को जप करता है और अन्य को सुनाता है वो निश्चय ही समस्त कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य मुक्ति का अर्थ है कर्म के फल से मुक्त होना। जैसा कि श्रीमद् भागवत में दूसरा पॉइंट 10.6 में आया है मुक्ति हित्वा यथारूपं। मुक्ति का अर्थ है अन्य सभी कार्यों को परित्याग और अपने स्वाभाविक स्थिति में पहुंचना स्वरूपेण व्यवस्थित। इसी बद्धावस्था में हम एक के बाद दूसरे कर्म में उछल रहते हैं। कर्म बंधन का अर्थ है सकाम कर्म का बंधन। जब तक मनुष्य का मन सदा सकाम कर्म में लगे रहता है तब तक उसे सुखी रहने को योजनाएं बनानी पड़ता है। किंतु भक्ति योग सर्वथा भिन्न है। इसमें तो परम सत्य के आदेश अनुसार कार्य करना होता है। जब हम किसी सत्ता के निर्देश अनुसार कर्म करते हैं तो हम कर्मफल से नहीं बनते। उदाहरणतः अर्जुन ने इसलिए युद्ध किया क्योंकि भगवान चाहते थे। अतः युद्ध के परिणाम के लिए अर्जुन जिम्मेदारी न था। जहां तक भक्ति का प्रश्न है श्रवण तथा कीर्तन भी इतना ही अच्छा है जितना कि शरीर मन तथा इंद्रियों से कर्म करना। जब इंद्रियों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है तो वे मनुष्य का कर्म में फंसे देती है। किंतु जब उनका उपयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो वे भक्ति के पुष्टि करते हैं। वो ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाका चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाभयं ददाति शोपदातिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचार्यं श्रीरूपं साग्ररात् सगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नित्यं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत राधा कंदनमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। पहले आप सबसे वैष्णव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कर दें, क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है, चार दोष में एक दोष है कि त्रुटि करना। वरिष्ठ वैष्णव ने मुझे ये सुयोग दिया है, बहुत बड़े भाग्य की बात है कि व्यास आश्रम में जू मंदिर में मैं आज पहली बार भगवान की कथा भागवत कथा आपको सुना रहा हूँ। ये सबसे बड़े बहुत बड़े मेरे के सौभाग्य, मैं ऐसी सोच रहा हूँ। तो आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रही है विदुर मैत्र संवाद में। प्राचीन वही राजा के पुत्र पश्चाताप के से शिव जी के भेंट हुई। प्राचीन में राजा के जस पुत्र थे पश्चाताप को, उन्होंने ने तपस्या करने के लिए जब घर से निकल गई तो रास्ता में इनको वैष्णव शिरोमणि वैष्णव मानव यथाशंभु भगवान अनन्य भक्त, इतना ही नहीं शिव जी की भी हम भगवान की तरफ मानते हैं, भगवान शिव जी के लिए हम आराधना करते हैं। वो उनको मिल गए, उन्होंने जब शिव जी को मिले रास्ता में तो शिव जी ने जब सुने कि ये पश्चातागण तपस्या करने के लिए जा रही है तो बहुत खुश हो गए। वास्तविक जैसी कोई वैष्णव देखता है, कोई एक व्यक्ति वैष्णव बनता है, इसको बहुत आनंद आता है, आओ उसके साथ बैठते हैं बात करता है, इसको आगे बढ़ाने के प्रयास कर। उसी प्रकार जब शिव जी देखे कि ये पश्चातागण भगवान की तरफ मुड़ रही है तो बहुत खुश हुए, आओ इनको भगवान के जिस उद्देश्य के लेके जा रहे थे तो उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसी उद्देश्य को सफल करने के लिए भगवान शिव जी भगवान के बारे में स्तुति की। अभी ये स्तुति के अभी अंतिम पर्याय में है, और एक श्लोक है कल खत्म हो जाएगा। तो अंतिम पर्याय में शिव जी बोल रहे कि जो व्यक्ति इसी स्तुति को पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, वो व्यक्ति संसार के सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये श्लोक का यही सार है कि कर्म बंधन से मुक्त होकर के इतना ही नहीं, इसके साथ साथ भगवान के जो दिव्य धाम है गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लेता है। अपने स्वरूप स्थिति को, स्वरूपेण व्यवस्थित उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में बता रही थे कि व्यक्ति अगर अपने स्वरूप को विस्मृत होता है, कर्म बंधन का चक्र फंस जाता है सकाम कर्म में। प्रभुपाद तात्पर्य में बोले कि सकाम कर्म ही बंधन का कारण और निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग। निष्काम कर्म जो भगवान के लिए अर्पित किया गया कर्म बंधन नहीं है। जज्ञासा भगवत गीता में भगवान जज्ञासा कर्म होते हो लोक कर्म बंधन आओ स्वरूप है व्यवस्थित अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। ये इसका सार है, इंट्रोडक्शन। जैसे हम कुछ लिखते तो उसको पहले से लिखते विषय क्या है, फिर बाद में विषय चालू करते, फिर अंत में सिद्धांत कंक्लूजन दे देते। उसी प्रकार ये है आज का विषय, कर्म बंधन, कर्म से मुक्ति, स्वरूपेण व्यवस्थित। आओ अंत में प्रभुपाद बोले कि व्यक्ति भक्ति में स्थित होता है। आओ भगवान के धाम लौट जाता है। तो हम चर्चा करेंगे अभी कि कर्म बंधन क्या है और कर्म से मुक्ति क्या है। वेद में नाना प्रकार के बात बताई गई है। आप भगवान भी भगवत गीता में कर्म के बारे में बताते रहते हैं। तीसरा अध्याय में कर्म है बोधवी कर्म श्री श्री राधा गुणते भगवान कि कर्म अकर्म भी कर्म, कर्म है बोधव्य बोधवी कर्म अकर्मण्य से बोधव कर्मणा गहना कर्मणा गति। कर्म का गति भगवान अंत में बोले कर्म, कर्म का गति अत्यंत गहन है। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या भी कर्म है, गहना कर्मणा गति, ये अत्यंत गहन है, इसको समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए हमको ये कर्म बंधन से मुक्त हो रहा है। कर्म तो करना ही होगा, किसी भी हालत में कर्म तो बंद नहीं होता है, क्रिया तो चलता रहता है। हम कर्म बंधन का एक ही सूत्र है, भक्ति समुद्र सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि यह जैसे हरे दास कर्मणा मनसा गिरा निकला सब वस्तासु जीवर मुक्त साउच्यते। कि अगर व्यक्ति कर्म वचन मन में सर्व अवस्था में भगवान से जुड़े रहता है तो उसका कर्मबंधन नहीं है, वो मुक्त पुरुष रहता है। कर्म करते हुए भी इसका कोई बंधन नहीं है। अगर हम देखते हैं दुनिया में लोग नाना प्रकार के सुखी होने के प्रभुपाद बोलते हैं कि लोग सुखी होने के लिए ये करो ये करो वो करो, मुझे ये करने से सुखी सुख मिलेगा, मैं इसको करने से सुखी मिलेगा, मुझे ये प्राप्त होता सुख मिलेगा, मुझे ये प्राप्त सुख मिलेगा। लोग नाना प्रकार के दिन रात गधे की तरफ कर्म करते रहते लेकिन अंत में सफलता नहीं होता है, क्योंकि ये संसार दुखाल है अशाश्वत। ये संसार में कोई सुखी नहीं है, ये संसार दुख के संसार है। ये संसार मायाबद्ध संसार है, हम सभी इस संसार में माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। आपका इधर प्रश्न आएगा तो भगवान ने माया से रचाया क्यों, हम क्यों बद्ध हो गए, हम क्यों दुख भोग रहे, इसका कारण क्या है। हम चाहते हैं सुखी होने के लिए, हम चाहते हैं किसी आनंद प्राप्त करें, लेकिन हमको आनंद सुख नहीं मिलता है। हम अनेक अनेक क्रिया करते रहते हैं लेकिन हमको असफलता होना पड़ता है, सुख नहीं मिलता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण भगवत गीता में भगवान बता रही है कि कामेश क्रोरेश रजगुण समुद्भव महासना महापापना विद्वय नमीह वैरिणव। काम दुख का मूल कारण है काम। आप काम का भाई अनुज छोटा छोटा भाई क्रोध, काम ऐसे क्रोध है जो कि रजगुण से उत्पन्न होता है। महासना महापाप, महासन है, महापापी है, आप हमेशा अतृप्त रहता है, ये विद्वान लोक के बैरी है। इसके वजह से व्यक्ति इस संसार में बंधन में फंस जाता है, अपने स्वरूप को विस्मृति होता है। मैं एक आत्मा हूं, जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, इसको भूलता है, अपने शरीर मन बुद्धि अहंकार को लेकर के शरीर और शरीर के संबंधित वस्तु पुत्र स्त्री घर धन दौलत इसमें माया का वैभव में देख करके अपने स्वरूप को विस्मृति हो जाता है, स्वरूप को भूल जाता है, भूलने के कारण माया का बंधन में फंस जाता है। माया है कौन? माया भी भगवान के शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, योग माया महामाया ये सब भगवान का अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति। लेकिन भगवान भगवती गीता बोले कि जो व्यक्ति मुझे स्मरण करता है, मुझे याद करता है, मेरा भजन करता है, वो माया से तरता है। मम माया दुरत्वया दैवेशया गुणमयी मामे को ये परपद्यन्ते माया मेतं तरन्ति। ये सब बात है। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय है साधु के संग शास्त्र के अध्ययन। मसंग शास्त्र न दूड़े न चित्ता, अगर हम साधु के संग करते नहीं तो शास्त्र के अध्ययन करते तब हमको पता चलता है कि वास्तविक हम ये गृह अंधकूप, जैसे प्रहलाद महाराज बताते कि गृह अंधकूप, हमें अंधकूप में गिर गया है, मुझे यहां से निकलना है। इसलिए प्रभुपाद की कृपा से आज स्कंद संस्था सारा पृथ्वी में खूब कम दिन में सर्वश्रेष्ठ संस्था महान है कि इससे आगे कोई बड़े संस्था नहीं है सर। इंडिया वर्ल्ड में एक नंबर, इसका एक नंबर है जहां पर इतनी सारी संख्या के लोग भगवान के भजन में लग रही है, आओ भगवान भक्ति करके अपने जीवन का, मनुष्य जीवन का जो परम कर्तव्य है, परम लाभ है, भगवत भक्ति को प्राप्त कर रही है। आओ इसकन संस्था में अनेक बड़े बड़े साधु संत महात्मा योगी ऋषि मुनि अनेक जुड़े हुए हैं। आओ सभी के केंद्र में एक ही लक्ष्य है, भगवान कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद ने, प्रभुपाद ने सत्यावेश अवतार थे, नहीं तो कोई एक बूढ़ा व्यक्ति 70 साल उम्र में अमेरिका जाकर के 10-11 साल उम्र अंदर में 108 मंदिर बनाया करके, इतना बड़ा संस्था बना करे, ये प्रभुपाद, इसका पीछे भगवान का शक्ति काम करता था। क्योंकि भगवान जो कार्य करते अपने भक्तों को आगे रख कर करते, भगवान अपने भक्तों के महिमा को बढ़ाते। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान सब कुछ किया लेकिन अर्जुन को श्रेय दे दिया, उसी प्रकार ये कलयुग के मैदान में प्रभुपाद को भगवान आगे रख करके इसका संस्था बनाई दिया, जिसके द्वारा आज हम लोग कलयुग का जो युग का धर्म है हरि नाम को प्रचार करें, हरि नाम जप करें, हम हमारा जीवन का जो मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम हम प्राप्त कर रही है। इसलिए हम लोग सब भाग्यशाली है, जितने लोग ये संस्था में जुड़े, ये परंपरा है एवं परंपरा प्राप्त मीम, चार परंपरा आता है, हमारा एक परंपरा है ब्रह्म महादेव घोड़े परंपरा है। दूसरे बात, हर एक चीज बाला नहीं रखना पड़ता है। दूसरे बात, हम देखते हैं ये कलयुग में नाना प्रकार के पंडित, नाना प्रकार के कथावाचक, हम वृंदावन जाते बड़े बड़े बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला बाबा भागवत कथा कर रहे, ये बाबा भागवत कथा कर रहे, ये बाबा कथा कर रहे, ये बाबा कथा कर रहे, आओ ऐसे आओ, बड़े बड़े मूछ रखते, बड़े बड़े बाल रखते, दाढ़ी रखते, आओ तंबाकू खाते, पान खाते, कहते बड़े बड़े कथा करते, ये सब मायावादी चैतन्य महाप्रभु बोले मायावादी भाष्य सुन ले भाई सर्वनाथ, आओ बोलते हम भी भगवान तुम भी भगवान, ऐसी नर नारायण नाना प्रकार के शास्त्र के विरुद्ध जाकर के अपने मत को स्थापित करके साधारण लोग को भ्रमित मार्ग में ले जा रहे हैं, आप खुद भ्रमित होते आओ ये साधारण जनता को भी भ्रमित मार्ग में ले जा रही है। इसका गति क्या होगा, बड़ा भयंकर होता है गति, नरक में जाना पड़ता है, अत्यंत दयनीय स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, हमारे जो वैष्णव फिलोसफी है, हमारा आचार्य लोग शरद गोस्वामी पहले महापुर आए, उसके बाद शरद गोस्वामी आए, उसके बाद बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, इसके बाद गुरुकृष्णदास बाबाजी, जगन्नाथ दास बाबाजी, इसके बाद हमारे महान आचार्य सेवंत गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि हमें ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम लिया, हम नाम ले ले कि हमारा अधिकार नहीं, ऐसे एक महान संत उसका नाम को भी उच्चारण करने का हमको संकोच आता है। भक्ति विनोद ठाकुर एक महान संत, उनके उनके कृपा से आज ये महाप्रभु के जो मिशन है डूब गया था, छिन्न भिन्न हो गया था, उधर इधर भटक गया था, उन्होंने उसको अपने शक्ति के माध्यम से, अपने भक्ति के माध्यम से बीज डाल करके, वो जो पानी डाल करके जो बीज सुखा गया था उसको अंकुरोद्गम किया मकनिंद्र ठाकुर ने। हाँ, उनके कृपा से फिर उनके पुत्र आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि इसको सारा देश विदेश में इसका फाउंडेशन पकाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। अंत में हमारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद आए, जो इसको चूड़ा में बना उड़ाई दिया, उसको पूर्णांग प्राप्त कर दिया कि महाप्रभु हे कौन, महाप्रभु हे कौन। प्रभुपाद ने इसको स्थापित कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसमें कोई भेद नहीं है। आओ, ऐसी अपने मन से नहीं, वैदिक शास्त्र के प्रमाण से स्थापित किए। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, कलौ प्रथम संध्याय, कलौ प्रथम संध्याय लक्ष्मीकांत भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ संन्यास गौरव विग्रह। ऐसे हर पुराण में भागवत में आता है, कुष्ठ वनोति सा कुष्ठम संगो पंगास पार्षद जज्ञ संकीर्तन पाए जजंति सुमेध सा। ऐसे हर पुराण में, हर शास्त्र में, वेद में महाप्रभु के बारे में लिखा गया है, महाप्रभु कृष्ण है। ये लोग को पता नहीं था, जगत गोस्वामी प्रभुपाद ने शास्त्र प्रमाण से इसको स्थापित करके हमारे सामने में रख दिया, जिसके द्वारा हम उनके कृपा से आज महाप्रभु पहचानते। महाप्रभु दोनों हाथों, नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य दोनों हाथों पर उठाए, कहे को भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद हाथ दोनों ऊपर क्यों उठाए? हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हाथ उठा के जप करते हैं ना, इसलिए उठाए शरणागति, सिखाए शरणागति भक्ति और प्राण। अपने आचरण धर्म में जीवन सिखाए, अपने नाचने जीवन सिखा न जाए। महाप्रभु शरण अवतार, छिपे हैं अवतार, किसको बताते नहीं थे उनको। कोई अगर विष्णु विष्णु कोई भगवान बोलता था, वो विष्णु विष्णु करके चुप रहते थे। आज उसको बोलते थे तुम बता मत, क्योंकि छन्न अवतार, छिपे हुए अवतार आए थे। किस लिए आए थे? इन्हें छह औषधों माया नशीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लावती मिलावी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने दिया हमको, हालांकि मंत्र था, वेद में मंत्र लिखा हुआ था लेकिन ढका हुआ था। महाप्रभु ने खोल करे प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी के सबसे बड़ा श्रेष्ठ, जब काशी में भेंट हुई तो प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु को पूछा कि आप तो सन्यासी हो, आप तो वेदांत पाठ करना चाहिए, आप इस साधारण जीवित तरह नाचते गाते आओ महामंत्र उच्चारण करते, इसका क्यों क्या, इसका क्या कारण है? ये तो सन्यासी का धर्म नहीं है। महाप्रभु उत्तर दिया, गुरु बड़े मूर्ख दे करिला शासन, गुरु मुझे मूर्ख दे के शासन किया कि तुम श्री भगवान के नाम ही उच्चारण करो, केवल हरे कृष्ण मंत्र ही तुम उच्चारण करो, बस यही पर्याप्त है। कली कले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है तो है सब जगत निस्तार, नाम मिला कली कले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। बहुत प्रमाण है, बहुत प्रमाण है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्व नाम रामीण। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल। आओ। महाप्रभु ने बोले कि आप जो वेद वेदांत पाठ करते रहते हो, ये जो भाष्य आपके वेद का जो भाष्य आप पढ़ रहे हो, वेदांत का जो सूत्र है ठीक है, लेकिन आपका जो वेदांत का जो भाष्य पढ़ रही हो वो शंकराचार्य का भाष्य, उसमें वेद का असली रहस्य को ढका गया है, सूर्य के समान ढक गया है। आओ आपने असली मुख्य चीज को छोड़ कर आप लोग गौण चीज में लगे रहे हो, इसलिए हम अपौरुषेय शास्त्र सारे वेदांत का रियूर शास्त्र निचोड़ सार अपौरुषेय शास्त्र श्रीमद भागवतम हम पढ़ते हैं, हम वेदांत नहीं पढ़ते, वेद वेदांत नहीं पढ़ते हम श्रीमद भागवत अमोल पुराण कृष्ण सुधाम उपवते धर्म ज्ञान दिवी स कलम कृष्ण दुषा में से पुराण उर्क बिजुलती। भगवान जाने के बाद ये भागवत पुराण सूर्य के समान उदय हुआ है, जिसको ये कलयुग के लोग प्राप्त करके अपने जीवन के जो परम लक्ष्य भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार, भगवत चिंतन, भगवत क्रिया को प्राप्त कर सके। मनुष्य जीवन एक बात है, समय जा रहे हैं, मैं क्या बोलूं, एक सबसे एक बड़ी बात है, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं आता है। शास्त्र के आर्य शास्त्र बोलते हैं कि 84 लाख जोनी के बाद, भ्रमण के बाद जीवात्मा को मनुष्य समय मिलता है। एक ही लक्ष्य है, तुम अपने तुम आत्मा हो, तुम भगवान का अंश हो, तुम भगवान से मिल जाओ, यही उद्देश्य मनुष्य शरीर का। इसलिए मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें एक कमियां है कि विनाशशील अनित्यारि शरीराणि विभव नव शाश्वत नित्य सन्निहित अमृत कर्तव्य धर्म संग्रह। एक ही कमियां है, ये शरीर विनाशशील है, इतना मूल्यवान है, इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है, हजार हजार साल के पीछे, हजार हजार साल का आगे की बात को शास्त्र अध्ययन से, साधु के संग के, भगवान कृपा से प्राप्त करते हुए भी मनुष्य शरीर विनाशशील है, एक दिन इसका समाप्त हो जाएगा। अगर एक बार समाप्त हो गया, आप मनुष्य शरीर के सदुपयोग नहीं किया है, तो आपको भटकना पड़ेगा 84 लाख जोड़ी। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए खेड़मयी सज्जन संगति रे, शंकराचार्य बताते मोहबुद्गर में, वही शंकराचार्य जो कि शिव जी का अवतार थे, वही बता रहे थे कि खेड़मयी सज्जन संगति रे का भवती भवान नव तरंगिणी नौका। हे मूर्ख, हे मूढ़ व्यक्ति, तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, नहीं साधु के संग करो, साधु संग करो, खेड़ काल तुम साधु संग करेगा, खेड़ मई सज्जन संगत भवती भगवान न बतरे, तुम भवसारू पार हो जाएगा। साधु संग, साधु संग, सर्वशास्त्र कहे लवे मात्र साधु संग, सर्वशक्ति आए। जैसे परसों आए थे हमारा एक महान आचार्य, हम इनके लेक्चर सुने, भक्तिचार्य महाराज ने, महान संत है ये, इस कर्म में बड़े बड़े हम देखे, बड़े बड़े साधु महात्मा हमको दर्शन देखने चले गए, उसका दर्शन हम अब नहीं कर पाएंगे, चले गए, चले गए, कौन चले गए, क्योंकि शरीर विनाश से चिला है, लेकिन इनका कृति, इनका वाणी है। ఈ ఇస్కన్ సంస్థామి ప్రభుపాదకి బడే బడే శిష్య బడే బడే సంత మహాత్మ గౌర గోవింద సింగ్ మహారాజ కి ఒడిశాకి బహుత్ బడే సంత మహాత్మ థే వో ప్రభుపాద బోలే తుమ్ భువనేశ్వరమే మందిర్ బనావ్ ఒడిశాయే ప్రచార కరో ఉన్న ఏక భికారీ థే ఉన్న సన్యాసీ క్యా భికారీ లేకిన్ కరోడో రూపా కై కరోడో రూపా భువనేశ్వర ఇస్కన్ మందిర్ స్థాపిత కియా 1967 మే 66 మే స్థాపిత కియా సారే ప్రభుపాద కే సారే కితాబ్ కు ఉడియా భాషా మే అనువాద కియే సారా ఒడిశా ప్రచార కర్నే చాలు కియే అప్నే కార్య సమాప్త కియే 1977 మే గే మాయాపుర్ మే జీవీసీ మీటింగ్ అటెండ్ కర్నే కే లియే కుచ్ ఏసీ అమెరికా కే భక్తో కు జగన్నాథ కే బారే బతా రహి థే తో ఉస్కా భగవాన్ కే బారే మే బోల్తే బోల్తే భగవాన్ సే జుడ్ గయి చలే గయి ఔర్ ఏక సంత హమే దేఖే థే సిద్ధర స్వామి మహారాజ్ బొంబే మే ఆతే బహుత్ సారీ సమయ మే హమే ఇస్కో దేఖే ఉన్కా లెక్చర్ సునే ఉన్కా గాయా హువా గీత్ వో తో అమెరికా కే హే లేకిన్ ఇతనే బడే సంత థే उनके उनके भजन इतना मधुर होता, उनके गाया हुआ भजन इतने आनंद लगता था। हमारे पुणे में एक बार आए थे, मैं सुन करके इतना आश्चर्य लगा कि कैसे संत बने उन्होंने, अपने जीवन को उतार करके भगवत भक्ति लगे रह करे मायापुर में पंचतत्व के आविर्भाव को किए। फिर एक दो महीना में हमारे वो लोग ने करके दिखाया, ऐसे नहीं बोले, जो बोले अपने अपने जीवन में उतार कर दिखाई दिया। ऐसी धीरे धीरे आगे भी जा करके आओ जो भी, क्योंकि सबको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उनके वचन उनके वाणी रह गया। साधु के संग का अर्थ साक्षात में मिलो, नहीं तो उनके वचन के उनके गाया हुआ गीत इनके बोला हुआ लेक्चर को श्रवण करो, ये साधु संग है जिसके द्वारा हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम आज के जो श्लोक है, मुक्ति प्राप्त करना है, लेकिन देखो एक एक बात है, हमको क्या मुक्ति प्राप्त, भक्त क्या मुक्ति चाहता है? मुक्ति सिद्धि कामी सकलीय शांत कृष्ण भक्त इस काम अतएव शांत। भक्त तो ये इच्छा करता है, भगवान आप मुझे कहीं भी जन्म लो कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ये की शर्त है भक्त के घर में, भक्त के संग में, भक्त का घर में के कीड़े के समान मुझे जन्म दो कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे भक्त के संग में लगा रखिए। मैं जैसे आपको स्मरण कर पाऊं, आपको भजन कर पाऊं, आपको ध्यान कर पाऊं, तो मुक्ति क्या करने का? मुक्ति भी एक अभिलाष है, अन्य अभिलाष या शून्य ज्ञान कर्म अनावृत्ति। कोई भी अभिलाष नहीं है, ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से भगवान के भजन करो। कैसे करेंगे हम भगवान भजन? कैसे भगवान भजन कर सकते? रास बिहारी हमारे सामने खड़ा है, गौर नेता हमारे सामने में खड़े है, भुवन आदि खड़े, हम कैसे इनको भजन करें? कोई सोचता है अरे ये तो पत्थर में बना हुआ है, अरे ये तो मुकुट पहरा हुआ कपड़ा पहरा है, अरे ये तो लकड़ी में बना हुआ है, ये कैसे भगवान है? भगवान है भगवान सब जगह में है, भगवान सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर भगवान की सत्ता नहीं है। अगर ऐसा चीज है तो ये मूर्ति आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह प्राण प्रतिष्ठा है, इसमें भगवान के स्वरूप व्यवस्थित है, तो भगवान इसमें कैसे नहीं है? भगवान है, पत्थर का मूर्ति भी बात करता है। इसके लिए क्या आवश्यक है? विश्वास, श्रद्धा, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। इसमें श्रद्धा और विश्वास का आवश्यक दो चीज। आप श्रद्धा करके इसको ही पूजा करेंगे भगवान के, ये भी एक भगवान के प्रतिबिंब है, इससे भी आपको आवाज सुनाई मिलेगा, उससे भी आपको प्रेरणा मिलेगा। अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? हमारा श्रद्धा के साथ आदु श्रद्धा आते हैं ना, आदु श्रद्धा, भजन क्या, निष्ठा, रुचि, भगवत में ऐसी क्रम प्रजाय से हम लोग पहुंचते हैं प्रेम में। तो ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का परिभाषा क्या है? ये समझना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा का परिभाषा ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्नेह, मैत्री भाव से आदान प्रदान, विश्वास इसमें जुड़ना, विश्वास बनाते हैं। श्रद्धा के असली शब्द है विश्वास। विश्वास होता है तो श्रद्धा उत्पन्न होता है, इसलिए श्रद्धा शब्द विश्वास दोनों जुड़े हैं आचार्य लोगों ने। श्रद्धा शब्द विश्वास, श्रद्धा और विश्वास को दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों परस्पर परिपूरक है, एक दूसरे से अभिन्न है। एक लाना तो दूसरे को लाना ही पड़ता है। श्रद्धा शब्द विश्वास है। आओ तीसरा बात क्या है? श्रद्धा से विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ता ना, ये सुदृढ़ पूर्ण रूप से दृढ़ भाव से, तो भगवान कैसे मिलेंगे? नहीं, भगवान तो भक्त वश्चल है। भक्त की बात छोड़ो, भगवान पतित पावन है, भगवान दीनबंधु है। हम भक्त नहीं है कोई बात नहीं है, हम एक पतित व्यक्ति, भगवान पतित पावन है। पतित से पतित व्यक्ति के भी भगवान उद्धार करते हैं। भक्त तो अपने इच्छा से, अपने कर्म से भगवान से जुड़ जाते हैं। वो बात छोड़ दो, भक्त के बात छोड़ दो, हम एक पतित व्यक्ति, भगवान पतित पावन है। इसके लिए क्या आवश्यक है हमारे लिए? श्रद्धा, विश्वास। तो भगवान की कृपा प्राप्त में कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सरल है, आप आज से, अभी से यह विश्वास करके, भगवान के नाम को उच्चारण करके, ये रास बिहारी से प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे अपने तन मन धन से, हृदय से। ऐसा नहीं है हम इधर रास बिहारी को देख रहे हैं, हमारा आंख दूसरा किसी को देख रहा है, नहीं, हमारा आंख रास बिहारी को देख रही है लेकिन हमारा वास्तविक अंतर्दृष्टि और कुछ देख रही है। ये हमारा स्थिति है, हम इधर रास बिहारी के पास खड़े, वास्तविक हम खड़े नहीं है, हम और कहीं दूसरा जगह पर खड़े हैं। ये रहस्य है, इसलिए हम राजभवन, अरे भगवान अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ भगवान परमात्मा के रूप से बैठ करके आपका हृदय में सब देखते हैं, परम साखी है भगवान। तो फिर हम भक्ति कैसे प्राप्त करेगा, तो भगवान को हम कैसे अपनाएंगे? इसलिए भगवान को हम अपना ही सकते, अपना नहीं सकते। भगवान को कृपा कटाक्ष को हम अपने तरफ नहीं मुड़ पाते, ये कारण है। हमारा मन ही हमारा मन एव मनुष्याणं बंध मोक्षाय। अभी समय जाते रहते हैं, मैं अब एक दो मिनट बताता हूं, मुझे बताने को मौका सब बड़े वैष्णव ने दिया है, आओ दो मिनट पांच मिनट बताता हूं। एक उदाहरण देता हूं, देखिए रामायण में एक कथा आता है जटायु पक्षी। जटायु एक पक्षी है, हम तो मनुष्य है, एक पक्षी था पक्षी, लेकिन ये भारतवर्ष में हर व्यक्ति जटायु का नाम सुने है। जटायु का गुणगान रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने बहुत भारी किया है। अब भगवान रामचंद्र ने जब जटायु को मिले थे अंतिम समय में, तब तो भगवान बोले कि हे जटायु, तुम बड़ भागो, मैं आपको अभी आप जो चाहे मैं वो देने को तैयार हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, आप चिंता मत करो, तुम भरो भागो, मैं आपको देने को तैयार हूं। भगवान बहुत आतुर है जटायु को देने के लिए, क्योंकि भक्त के भाव से भगवान बहुत आतुर होते, बहुत आतुर होते भक्त को मिलने के लिए। भक्त बोलता है तू मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, लेकिन भगवान बार बार उसके पास जाते रहते, उसके पास जाते रहते, भक्तों को भगवान छोड़ते नहीं। भक्त बोलता है भगवान आप मेरे पास मत आइए, लेकिन भगवान भक्तों को छोड़ते नहीं, ये भक्त के एक एक क्वालिटी है। तो भगवान बोले तू भर मांगो, भर मांगो। जटायु बोलता है भगवान मैं क्या भर मांगू, सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो ब्रह्म भगवान आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपको देख रहा हूं, इससे और क्या बड़ा चीज है, मुझे बताइए, मैं मांग लू आपको। भगवान हार गई, भगवान हार गई। भगवान बोले हैं जटायु मैं आपको कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं आपसे जन्म जन्मांतर से रूढ़ी रह गया, तुम अपने कर्म के माध्यम से परम गति प्राप्त कर रही हो, मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूं आपको, मैं जन्म जन्मांतर से तुम्हारे से रूढ़ी रह गया। ऐसा हुआ क्यों? जटायु के पास एक कौन सा क्वालिटी था जो आज सारा संसार जटायु गुणगान कर रही है? क्या क्वालिटी था? निष्काम कर्मयोग। जटायु को यह मालूम था कि जो रावण है ये सीता माता को लेकर जा रही है, अगर मैं इसका सामना करूं मेरा मृत्यु निश्चित है। जटायु को यह बात मालूम था, कोई मृत्यु का मुख जाता है, लेकिन जटायु ने जाप दिया। क्यों? भगवान के सेवा का एक मौका। जटायु ने सोचा कि ये मौका हर जिंदगी में नहीं मिलता है, करोड़ों करोड़ों जिंदगी में चला जाएगा, भगवान की सेवा करने का मौका मुझे नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़े मेरे पूर्व जन्म की सुकृति से। जटायु दशरथ के मित्र थे, हाँ। जटायु ने ऐसी अचानक उनको ये मौका मिल गया, नहीं इसका भी प्रीवियस है, समय नहीं, मैं बता नहीं सकता हूं, थोड़ा भी बताता हूं। जटायु ने यह सोचा कि ये जो सेवा का मौका मुझे मिल रही है ये करोड़ों जिंदगी में नहीं मिलेगा, भगवान की सेवा ये बहुत बड़ी सुनहर है, मैं नहीं छोड़ सकता हूं। कर्म का फलाफल को विचार न करते हुए झांप दिया सीता माता का सुरक्षा के लिए। जटायु को मालूम था कि मेरा हालत क्या होगा, रावण त्रिपुरा में जाई, मेरा मृत्यु निश्चित है, लेकिन भगवान की सेवा का मौका, इसीलिए सारा संसार जटायु को गुणगान कर रही। ये जटायु से हम सीखना है कि भगवान का सेवा हम कैसे सेवा करें, भगवान की संतुष्टि भगवान को संतुष्ट कर लिया उन्होंने सेवा के माध्यम से। है सीता माता क्या बोले थे कि हे पखी तुमने मेरे लिए जीवन दे रहे हो, मैं आपको आशीर्वाद करता हूं, तू मेरे स्वामी को देखने तक जीवित रह तुरंत, उसको उसका फल एक मुहूर्त भी देर नहीं हुआ। जब जटायु का पक्ष को छेदन कर दिया, जटायु तो तुरंत मरने वाला था, लेकिन सीता माता ने इसको आशीर्वाद किया था उसी समय में कि हे निरपराध पखी तुमने मेरे लिए तुम्हारा जीवन दे रहा हो, मैं आपको आशीर्वाद करता हूं, तुमने मेरे स्वामी को देखने तक जीवित रहो, तुम्हारा मुख से मेरा पति ने वार्ता मिलेगा। अरे वार्ता क्या मिलेगा, तुमने भगवान को मिलेगा। ए? देखो एक मुहूर्त भी देर नहीं हुआ, फल मिल गया जटायु को, तो जटायु सुखी, पक्ष कटते हुए भी कोई तकलीफ नहीं था, पड़े था भगवान फिर ढूंढते ढूंढते आए, आओ उसको मिले, आओ उनसे संभाषण किए, आओ भगवान को देखते हुए जटायु ने परम धाम को चले गए। आओ भगवान ने जो रामचंद्र ने अपने पिता का संस्कार नहीं किए थे, रामचंद्र ने वनवास में थे, पिताजी का संस्कार ने भरत किया था, वही भगवान रामचंद्र जटायु ने दशरथ के मित्र होने के नाते जटायु को अपने पिता संबोधन करके जटायु के संस्कार किया। ये सब रामायण में वर्णना है, अभी समय नहीं है, समय हो गया, मैं कुछ ज्यादा बता नहीं पाता, आओ कथा तो हमेशा चलता रहता है, अभी यही समाप्त लेता हूं। हरे कृष्ण, 9-10 बजेगा, प्रश्न तो नहीं हो पाएगा, किसका कुछ प्रश्न है तो मुझे बाद में बोल सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की सवेद गौरव भक्त की।